नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओ, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से दूसरी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है निर्गमन। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए, अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुने ये मधुर गीत।
मंदिर खुदाए पाप का प्यारो तुम्ही तो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो हो। मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम्ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो हो। अंधकार इस जहान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं जहान की ज्योति तुम्ही तो हो। अंधकार इस जहान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं जहान की ज्योति तुम्ही तो हो। मुंजी मसीह पाप का खत भी तुम्ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो हो। मंदिर खुदाए पाप का प्यारो तुम्ही तो हो, घर उसका पाक रखना तुम्ही तो।
प्रिय मित्र, आप सबों को प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में मेरा नमस्कार मिले। मैं आशा करता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम के द्वारा अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं और प्रभु की संगति में बढ़ रहे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि किस प्रकार परमेश्वर इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकालकर लाल समुन्द्र के उस पार सूखी भूमि में से होकर ले गए और मिस्र की सेना को नाश किया और उनकी सारी संपत्ति को जो उनकी थी इसराइली लेकर चले गए। और इन सब कार्यों के द्वारा परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन भी किया कि वही परमेश्वर है। आज हम अपने अध्ययन को निर्गमन की पुस्तक उसके 15 अध्याय से आरंभ करेंगे और इस अध्याय में हम इन मुख्य विषयों पर विचार करेंगे। विषय वस्तु इस प्रकार है, छुटकारे के लिए मूसा और इसराइली प्रजा का गीत गाना, पानी के लिए लोगों की तड़प और कुड़कुड़ाना क्योंकि वहां पीने के लिए पानी नहीं था, मारा में कड़वा पानी का होना और एलीम में कुआं का पाया जाना। मित्रों, आइए हम आगे देखते हैं इसराइलियों के छुटकारे का गीत। जैसे ही इसराइल की संतान सुरक्षित लाल सागर को पार करती है, वैसे ही वे अपने सुरक्षित पार होने पर एक गीत गाने में लग जाते हैं। हम निर्गमन की पुस्तक उसके 15 अध्याय उसके 1-3 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तब मूसा और इसराइलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है, मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा, मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा, यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। मित्रों, इस समय इसराइली लोग बहुत जोश में थे। यह वही भीड़ थी जो कुछ समय पहले लाल सागर के उस तरफ विलाप कर रही थी और कह रही थी कि हमें मिस्र में लौट जाना चाहिए। क्या मिस्र में कब्रें न थी कि हमें इस वीराने में मरने के लिए ले आए हो? हमें पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय उसके 11 पद में बताया गया है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। मित्रों, इस अनुभव के द्वारा परमेश्वर हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य को सिखाना चाहते हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्र 10 अध्याय उसके 1-2 पद में लिखा है, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुन्द्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुन्द्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि कैसे इसराइलियों ने मूसा के द्वारा बपतिस्मा लिया। यह तो पानी के द्वारा संभव नहीं था क्योंकि वे लोग सागर के बीच में से सूखी भूमि में से होकर पार हो गए थे। सागर की एक बूंद पानी भी उनके शरीर पर नहीं पड़ा। मित्रों, यदि आप पानी के संबंध में बातें करना चाहते हैं तो मिस्रियों को देखिए, क्योंकि ये वही लोग थे जो पानी में भीगे थे। तो क्या इसका मतलब है कि इसराइलियों ने मूसा का बादल और समुद्र में बपतिस्मा लिया? मित्रों, इसका मतलब यह हुआ कि उनकी पहचान मूसा के साथ हुई। वास्तव में बपतिस्मा का अर्थ पहचान पाना है। बपतिस्मा की धर्म विधि वह बपतिस्मा है जिसे जल से लिया जाता है, जिसे मैं भी विश्वास करता हूं, और यह महत्वपूर्ण है जो एक बपतिस्मे की ओर ले चलती है, जो पवित्र आत्मा का वास्तविक बपतिस्मा है, जो हमें मसीह के साथ पहचान दिलाता है और हमें मसीह में बनाए रखता है। तो फिर कैसे इसराइलियों ने मूसा का बपतिस्मा लिया? वे जब सागर के एक किनारे पर थे तो वे सभी लोग दोषारोपण कर रहे थे, और जब उन्होंने सागर को पार कर लिया तो उन्होंने मूसा का गीत गाया। वे मूसा के साथ पहचाने गए, वे मूसा से होकर ही छुड़ाए गए थे। हम इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय उसके 29 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, विश्वास ही से वे लाल समुन्दर के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। मित्रों, विश्वास ही के द्वारा इसराइलियों ने समुन्द्र को पार किया, परंतु यह विश्वास क्या था? यह इसराइलियों के संतानों का विश्वास नहीं था, क्योंकि उनके पास विश्वास के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था जब तक कि वे लाल समुन्दर पार नहीं कर लिए और उनकी पहचान मूसा के साथ नहीं हो गई। यह मूसा का विश्वास था। यह मूसा ही था जिसने लाल समुन्दर को मारा था। यह मूसा ही था जिसने उनकी अगुवाई उस पार में किया। जब वे लाल समुन्दर के उस पार पहुंचे तो वह मूसा ही था जिसने छुटकारे के गीत को गाया। अब उन्होंने परमेश्वर के उद्धार को देखा है और वे मूसा के साथ पहचाने गए हैं। उन्होंने मूसा का बपतिस्मा पाया है। मित्रों, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो आपके साथ भी यही होता है, क्योंकि वही एकमात्र प्रभु है जो हमें मिस्र की गुलामी से बाहर निकालते हैं और इस संसार के मिस्र रूपी अंधकार से निकालते हैं। वे हमें लाल सागर के उस पार ले चलते हैं, और यही उसका छुटकारा, उसका उद्धार और उसका छुड़ौती का काम है। वह हमें छुड़ाकर उस स्थान में लाता है जहां पर हम उसके छुटकारे के गीत को उसके लिए गा सकते हैं। तब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं और मसीह में बपतिस्मा लेते हैं। हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 13 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। मित्रों, पवित्र आत्मा हमें मसीह के साथ एक करता है और उसके साथ एक होने के लिए प्रेरित करता है। उसके साथ जुड़ना एक अद्भुत बात है। एक बार एक छोटी और प्रिय महिला ने उद्धार के विषय में बड़े निश्चयता के साथ कहा, आपको कोई भी उसके हाथों से छीन नहीं सकता है। और किसी ने उसके प्रत्युत्तर में कहा, आप शायद उसकी उंगली में से फिसल भी सकती हैं। तब उसने कहा, ओह नहीं, मैं उसकी उंगलियों में से नहीं फिसल सकती, क्योंकि मैं स्वयं उसकी उंगलियों में से एक हूं। मेरे मित्रों, यही सच है, क्योंकि हम सब जो मसीही हैं उसके देह की अंग हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें उसके साथ जोड़ता है। यह क्या ही अद्भुत छुटकारा हमें मसीह में मिला है। मित्रों, जो कुछ भी इसराइलियों के साथ हुआ था वह हम सब के लिए एक उदाहरण है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं तो परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, उसकी यह एक तस्वीर है। मित्रों, इसराइली मूसा के साथ अपने परमेश्वर के लिए छुटकारे के गीतों को गाने से पहले वे कभी कभी रेगिस्तानी करुण गीतों को गाते थे। लाल सागर पार करने से पहले वे करुण गीतों को जोर जोर से और देर तक गाते थे। वे फिर से मरुभूमि में लौटेंगे, क्योंकि यह उनके गीत का यही विषय है कि वे मरुभूमि में से होकर यात्रा करने वाले थे। जो भी हो, कुछ समय के लिए ही सही, उन्होंने बड़े जोश के साथ छुटकारे के गीतों को गाया। मित्रों, उनके गीतों की तुलना हम दबोराह और बराक के गीतों के साथ कर सकते हैं जो हमें न्यायों की पुस्तक में मिलते हैं। बाइबल में ऐसे बहुत से गीत पाए जाते हैं जिसे हम भजन संहिता की पुस्तक में भी पाते हैं। आप पाएंगे कि उसमें जो गीत थे वे बहुत महान गीत थे, यहां तक कि यिर्मयाह की भी गीत है। हालांकि ये प्रायः विलाप और शोक से भरे थे। अन्य कई भविष्यवक्ताओं के भी गीत पुराने नियम में पाए जाते हैं। मित्रों, नया नियम भी गीत के साथ आरंभ होता है। वैद्य लुका ने बहुत से गीतों को संकलित किया है और हम यहाँ पर एलिजाबेथ के गीत को भी पाते हैं। जब उसे यह समाचार प्राप्त हुआ कि उसे भी एक पुत्र की प्राप्ति होगी और जब मरियम को पता चला कि वह यीशु की माता बनने वाली है तो वह भी गीत गाई। ऐसे ही बहुत से गीत हैं जो यीशु मसीह के जन्म से संबंधित हैं। अंततः प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में स्वर्ग की झलक को हम पाते हैं, जहां पर हम लोगों की एक बड़ी भीड़ को परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर एक नए गीत को गाते हुए देखते हैं। मित्रों, वह मेरे लिए पहला अवसर होगा जब मैं गीत गाने के लिए वहां पर खड़ा होऊंगा। वर्तमान समय में मैं इतना अच्छा नहीं गाता हूं, लेकिन उस समय तक एक नए शरीर और एक नई आवाज के साथ मैं निश्चित तौर पर अच्छे गीत गाने पाऊंगा। मित्रों, आज सब प्रकार की बातें जो शांति के बारे में है, तो यह सबके लिए अच्छा होगा कि वे मूसा की इस गीत को पढ़ें। यह गीत हमें बताती है कि यहोवा युद्ध करने वाला व्यक्ति है। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 19वें अध्याय में उसके पृथ्वी पर आगमन और सभी अधार्मिकता को कुचलते हुए देखते हैं। जब तक वह ऐसा नहीं करते हैं, तब तक पृथ्वी पर कभी शांति नहीं होगी। हम मत्तयी सुसमाचार 10 अध्याय उसके 34 पद में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु ने कहा है, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल कराने आया हूं। मैं मेल कराने को नहीं, परंतु तलवार चलवाने आया हूं। मित्रों, ये शब्द उसके पृथ्वी पर प्रथम आगमन के बारे में कहे गए थे। दूसरी बार जब वह पृथ्वी पर आते हैं तो वह तलवार के साथ शांति बहाल करेंगे, और यही एक तरीका है कि इस पृथ्वी पर से अधर्म को दूर किया जा सके। मूसा और इसराइलियों का यह गीत एक बहुत ही सुंदर अनुभव का याद कराता है। जब उन्होंने लाल समुन्द्र को पार किया, तब उन्होंने इस बात को याद किया। मित्रों, उनके गीतों में एक कहानी थी जो उन्होंने परमेश्वर को करते हुए देखा, और परमेश्वर ने जो उनके लिए किए थे, तो यह उनके लिए उपयुक्त था कि वे इस बात को कभी ना भूलते। लेकिन निश्चित तौर पर यह गीत उनके सारे अनुभवों को उनके सामने रखता है, जिसे हम निर्गमन की पुस्तक उसके 15 अध्याय और उसके 4-6 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, फिरौन के रथों और सेना को उसने समुन्द्र में डाल दिया, और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुन्द्र में डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर की नाई गहरे स्थानों में डूब गए। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। मित्रों, इसराइली अपने छुड़ाए जाने का आनंद मनाते हैं। मिस्र और मिस्रवासी उनके लिए दुनिया के दासत्व, उनकी आशाहीनता और असहायपूर्ण स्थिति को दर्शाते हैं, परंतु अब वे छूट चुके हैं, और यही उनके गीतों का सार एवं सारांश है। मित्रों, हमें याद रखना चाहिए कि वे अब मूर्तियों के देश से बाहर आ गए हैं। प्रत्येक विपत्ति हर एक मिश्रित देवताओं के समानांतर थी, परंतु अब वे किस प्रकार के निष्कर्ष में पहुंचे हैं, हम निर्गमन 15 उसके 11 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। मित्रों, इसराइली छुड़ाए हुए लोग थे, और लोगों के लिए छुटकारा पहले होना चाहिए। आज यह एक महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर आपसे अपने लिए कुछ नहीं करवाना चाहते हैं जब तक कि आपने उसके छुटकारे और उसके उद्धार को ग्रहण नहीं किया है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया है। वह किसी भी चीज के लिए आपसे कुछ भी करने को नहीं कहते हैं, और वह संसार से भी नहीं चाहते हैं कि वे उसके लिए कुछ करें। परमेश्वर यही नहीं कहते कि यदि आप अपने आप को प्रमाणित करेंगे या एक उच्च स्तर पर आएंगे, अपने चेहरे को धोएं और अपने आंगन को चिन्हित करें और स्वव्यवस्थित करें, क्योंकि मैं आपका एक अच्छा पड़ोसी बनने को उत्सुक हूं, वो कभी भी ऐसा नहीं कहते। मित्रों, परमेश्वर इस संसार से कुछ भी नहीं चाहते हैं। वह इस खोए हुए संसार से कहते हैं कि तुम मेरे पुत्र के साथ क्या करोगे जिसने तुम्हारे लिए अपने प्राण को दे दिए हैं। मित्रों, हम पद 13 को फिर से एक बार सुने, अपनी करुणा से तू अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है, अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। ऐसा लगता है मानो वे प्रतिज्ञा किए हुए प्रदेश में हैं, जहां तक परमेश्वर का विचार है कि वे उस देश में हैं, क्योंकि वह उन्हें वहां ले जाने वाले हैं। तब हम निर्गमन की पुस्तक उसके 15 और उसके 18 और 19 पद में पढ़ते हैं, यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा, यह गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के घोड़े रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया, परंतु इसराइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए। मित्रों, अब हमें एक लड़की के बारे में परिचय दिया जाता है जिसे हमने मूसा के जन्म के बाद अब तक नहीं सुना। वह मरियम थी जो मूसा और हारून की बहन थी। हम निर्गमन उसके 15 अध्याय और उसके 20 और 21 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, और हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली और मरियम उनके साथ यह टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। इस गीत का निष्कर्ष यह है कि इसमें परमेश्वर को छुटकारे के लिए स्तुति और धन्यवाद की भेंट दी गई है। आगे हम देखते हैं पानी की कमी के कारण इसराइलियों का कुड़कुड़ाना। मित्रों, इसराइली लाल समुद्र को पार कर चुके थे और उनके पास एक बहुत अच्छा समय था कि वे उसकी स्तुति करते और मूसा के गीतों को गाते, क्योंकि अब वे छुड़ाए हुए लोग थे। हो सकता है कि आप ऐसा सोचेंगे कि जीवन की सारी बाधाएं निकाल दी गई है और अब जीवन उनके लिए आसान है और उन्हें उनकी सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल चुका है। अब आकाश में एक भी बादल नहीं होना चाहिए, न राह में कांटे और न ही मंडली में से किसी को ठंडी आह लेना चाहिए। मित्रों, जब वे 3 दिन की यात्रा निर्जन प्रदेश में कर चुके तब उन्हें क्या हुआ? वे प्यासे हो गए और उन्हें प्यास लगी। हम निर्गमन 15:22 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब मूसा इसराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। मित्रों, मिस संपन्नता का देश था और पानी प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी, लेकिन अचानक से जब इसराइलियों ने लाल समुद्र को पार किया तो उन्होंने अपने आप को विपरीत परिस्थिति में पाया। अब उनके लिए कहीं भी पानी उपलब्ध नहीं थी, मिस्र के कुंड अब उनके पास नहीं थे और अब तक उन्होंने बहते हुए झरने को नहीं पाया था। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु में नए जन्म पाए हुए प्रत्येक परमेश्वर के संतान का भी यही एक अनुभव है। उधार पाने के बाद एक विश्वासी के लिए मिस्र के कुंड उसे संतुष्टि नहीं दे सकते हैं। मित्रों, आत्मा की प्यास के लिए एक समय होता है और उसी समय काल के विषय में पौलुस फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 7 पद में कहते हैं, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। उसके बाद प्रेरित पौलुस अपनी बड़ी प्यास और तीव्र लालसा को प्रकट करते हैं और फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 10 पद में आगे कहते हैं, और मैं उसकी और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मित्रों, छुटकारा पाने के बाद परमेश्वर के पुत्रों का यही अनुभव है। मैं कुछ अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मुझे याद है जब परमेश्वर ने निश्चित रूप से अपने हाथ को मेरे ऊपर अपनी सेवकाई के लिए रखा। मित्रों, मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा शांति को प्राप्त किया, लेकिन मेरा जीवन एक दिन में ही नहीं बदल गया। मुझे मेरे पुराने स्वभाव से अर्थात पुराने मनुष्यत्व से छुटकारा पाने में काफी समय लगा। मुझ में एक कमी थी कि मैं बहुत ही जल्द क्रोधित हो जाया करता था और कुछ लोग मुझे क्रोधित करने या होने के लिए उकसाते थे ताकि मैं क्रोधित होकर कुछ गलतियां कर बैठूं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं क्रोधित नहीं हुआ। मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब आप पापमय निर्जन क्षेत्र से बचाए गए हैं या छुड़ाए गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके सामने परीक्षाएं या रुकावटें नहीं आएंगी। आपको थोड़ी प्यास लगती है, लेकिन मिस्र की जल मात्र आपकी प्यास को नहीं बुझा सकती है। आप अनंत जीवन के जल की खोज करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि आपको वह कहाँ मिलेगी। मैं भी उस कठिन समय में बाइबल के बारे में अधिक नहीं जानता था कि मुझे इसका उत्तर कहाँ मिलेगा, परंतु मैंने बहुत जल्द ही उसे पा लिया। योहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 37 पद में लिखा है, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। मित्रों, यह क्या ही अद्भुत बात है कि हम उसके पास आए और पिए। उनका प्रथम अनुभव यह था कि वे प्यासे थे और पानी नहीं मिल रहा था, और अब उनका यह दूसरा अनुभव है जो पहले से उतना अच्छा नहीं है। निर्गमन 15 अध्याय उसके 23 से 26 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे न पी सके। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे कि हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मित्रों, उनका दूसरा अनुभव समुद्र के उस पार था जहां का पानी खारा था, जिसे मारा कहा गया है। वे 3 दिन की यात्रा कर चुके हैं और अब वे प्यासे हैं, और अंततः जब वे पानी के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पानी खारा मिलता है जिसे वे नहीं पी सकते हैं, अर्थात यह पीने के लायक भी नहीं था। मित्रों, आप इस बात का ध्यान रखें कि इसराइली लोग अब छुड़ाए हुए लोग हैं। मारा उनके रास्ते में था जिसमें से होकर परमेश्वर उन्हें ले जा रहे थे। उसने उनके लिए इसे चिन्हित कर लिया था। हो सकता है कि आप इसे स्मरण नहीं करेंगे, परंतु मारा की घटना एक साधारण मसीहों का अनुभव हो सकता है। जब मसीहों के जीवन में एक कड़वा अनुभव आता है तो यह दुविधा उनके लिए व्याकुलता को लाती है। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया। मित्रों, मैं आपको नहीं बता सकता कि कुछ निश्चित चीजें मसीहों के साथ क्यों घटित होती है, परंतु मैं इतना जरूर जानता हूं कि परमेश्वर उन्हें सजा नहीं दे रहे हैं, वह उन्हें किसी एक खास बात के लिए शिक्षित और तैयार कर रहे हैं। प्रभु ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश मिलेगा, आपके मार्ग में भी एक मारा है, प्रत्येक विश्वासियों के मार्ग में एक मारा है, और परमेश्वर ने इन सब का प्रबंध कर दिया है। किसी ने इस प्रकार से कहा है कि निराशाएं परमेश्वर के साथ एक नियुक्ति है, और मैंने इसे सही पाया है। मित्रों, एक बार एक जवान ने कहा कि मैं स्कूल जाना चाहता हूं और सेवकाई के लिए तैयार होना चाहता हूं, परंतु मेरे पिता के देहांत के कारण मुझे अपनी माता को संभालना पड़ा, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सका। मित्रों, इसके लिए स्कूल ना जा पाना मारा था। उसी प्रकार एक बार एक जवान और सुंदर दिखने वाली स्त्री का परिचय एक कलीसिया के जवान से हुआ और वे दोनों विवाह करने वाले थे, लेकिन वह जवान सेना में था और युद्ध के दौरान मारा गया, और उसी चिंता के कारण इस स्त्री का पूरा सिर का बाल सफेद हो गया। यह उसके जीवन में मारा था। मेरे मित्रों, जीवन में बहुत सी असफलताएं, निराशाएं और दुख हैं, और आपकी योजना जोड़ने वाले खिलौने के समान तोड़े और अलग किए जा सकते हैं। हो सकता है कि पहाड़ी के किसी क्षेत्र में आपका भी एक छोटा कब्र है, मेरा भी है। कहने का मतलब है कि हम सबके पास मारा है और आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, आप उसके चारों ओर चक्कर नहीं लगा सकते हैं, न उसे छोड़ सकते हैं या उसके नीचे न ही सुरंग बना सकते हैं। मित्रों, परमेश्वर दागने वाला लोहा का उपयोग करते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा ही था तो मैंने देखा गर्म लोहा की छड़ से एक छोटे बछड़े को दागा जा रहा था। तब वह बछड़ा जोर से चिल्लाने लगा, जिसे देखकर मुझे थोड़ा दुख भी हुआ, परंतु उस दिन से सब लोगों को मालूम हो गया कि यह बछड़ा किसका है। एक बार बछड़े को दागने के बाद में वह नहीं खोता है, और परमेश्वर आज हमारे साथ भी वैसा ही करते हैं। मित्रों, क्या चीज थी जो मारा के कड़वे पानी को मीठा बना दी। हमें बताया गया है कि पेड़ की लकड़ी काटकर पानी में डाल दी गई, जिससे पानी मीठी हो गई। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 21 अध्याय और उसके 23 पद में लिखा है, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। और गलतियों के पत्र 3 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। मित्रों, यीशु मसीह काट पर मरा और यह वह क्रूस है जो जीवन के अनुभव को मीठा बनाता है। उसने प्रत्येक व्यक्ति के लिए मृत्यु का स्वाद चखा और मृत्यु के डंक से हमें बाहर निकाला। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? हे कब्र, तेरा जय कहाँ रहा? हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 55 में इसे देख सकते हैं। यह मसीह का क्रूस है जो मारा के अनुभव को जीवन में मीठा बनाता है। मित्रों, हम निर्गमन 15 उसके 27 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, तब वे एलीम को आए जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। मित्रों, एलीम एक भरपूर आशीष और फलदायक स्थान था। वहां पर 70 खजूर के पेड़ और 12 कुएं थे। मारा की कड़वाहट के बाद परमेश्वर अपने लोगों को एलीम में ले आए। रात भर का रोना है, परंतु सुबह आनंद ही मिलता है। हो सकता है शमौन पत्रस को भीतरी कोठरी में कैद कर दिया गया हो, परंतु स्वर्गदूत उसके दरवाजे को खोलने जा रहे हैं। हो सकता है कि पौलुस और सिलास को मध्य रात्रि में मारा गया, परंतु एक भूकंप उन्हें छुटकारा देगा। मित्रों, आज तीर्थ यात्रा के बगल में या साथ में मारा भी है, परंतु वहां पर एक एलेम भी है। उपयोगिता के लिए परमेश्वर की योजना हमेशा मारा की ओर ले जाती है, और वह भी एलिम के द्वारा से। आप सब यूसुफ को अच्छी तरह से याद करते होंगे, उसके पास यही अनुभव था। मित्रों, बहुत से प्रभु के दास और सेवक हैं जिन्होंने यह अनुभव किया, जैसे मूसा, एलिया, दाऊद, अदोनीराम जटसन आदि। मुझे भरोसा है कि वही अनुभव अवश्य ही मुझे और आपको भी मिलेगा। मित्रों, प्रत्येक मारा के उस पार एक एलिम है, जिस प्रकार से प्रत्येक बादल के पार एक सूरज होता है और प्रत्येक छाया के पीछे रोशनी होती है, प्रत्येक परीक्षा के पीछे एक विजय है और प्रत्येक बौछार के पीछे एक धनुष है। जॉर्ज मैथसन ने लिखा है, मैं धनुष का पीछा बारिश में होकर करता हूँ। मित्रों, यह वह मार्ग है जिसमें से होकर परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं, और ये सारी बातें इसराइलियों के जीवन में हमारे लिए उदाहरण देने के लिए घटी। मित्रों, क्या आज आपके जीवन में मारा है? यदि है तो यह जान ले कि एक एलेम भी है। मित्रों, यहाँ पर आज हमारा कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि निश्चित रूप से इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिला है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में भी आप इस वचन को सुनेंगे और प्रभु के आशीषों को प्राप्त करेंगे। इस वचन पर अवश्य विचार करते रहें। प्रभु आप सबको इस अध्ययन के द्वारा निरंतर आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
अब जो खुदाए पाक से मांगी दुआए तो देगा जवाब उसके अपने तुम्ही तो हो। अब जो खुदाए पाक से मांगी दुआए तो देगा जवाब उसके अपने तुम्ही तो हो। मुंजी मसीह पाप का हद भी तुम्ही तो हो। घर उसका पाप रखना वो भी तुम्ही तो हो। मंदिर खुदाए पाप का प्यारो तुम्ही तो हो। घर उसका पाप रखना वो भी तुम्ही तो हो। मंदिर खुदाए पाप का प्यारो तुम्ही तो हो। घर उसका पाप रखना वो भी तुम्ही तो हो। वो भी तुम्ही